इशिका अब ठीक थी। हाँ, ये बात अलग थी, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद इशिका वापस अपने घर आना चाहती थी। अभिमन्यु ने उसकी सिक्योरिटी से लेकर रहने तक का अच्छा इंतजाम करवा दिया था, ताकि इशिका को अपने पुराने घर में रहने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इशिका राधिका के साथ अपने पुराने घर में पहुंच चुकी थी। अभिमन्यु इशिका के आने से पहले वहां से हट गया था। वो इशिका के घर से दूर अपनी गाड़ी में था और अपने आईपैड स्क्रीन से इशिका को देख रहा था। उसने पूरे घर में हिडन कैमराज इंस्टॉल करवा दिए थे, ताकि अंदर भी उस पर नजर रख सके। इशिका राधिका के साथ अपने घर के अंदर गई। वहां आकर उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। इशिका को मुस्कुराते हुए देखकर राधिका ने हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछा, आर यू श्योर तुम यहां अकेली रह लोगी? अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम कैसे सब खुद से मैनेज करोगी? राधिका एक माँ के तौर पर उसकी परवाह कर रही थी, तो वहीं इशिका के लिए अब वो सिर्फ उसकी आइडल मिसेस सिंघानिया थी, जिसकी वो बहुत इज्जत करती थी और उसकी तरह बनना चाहती थी। इशिका ने हाँ में पलके झपकाई और कहा, डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं हमेशा से यहाँ अकेली रही हूँ। वैसे भी एक्सीडेंट में मुझे कुछ खास चोटें नहीं लगी हैं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ हैं। मिस्टर सिंघानिया और आयशा इस बात से आपसे डेफिनेटली नाराज़ होंगे। आपको घर जाना चाहिए। जब भी इशिका आदर्श और आयशा का जिक्र भी करती, राधिका के दिल पर छुड़ियां सी चलने लगती। उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाते कि कैसे उन सब ने मिलकर उसकी बेटी को उससे अलग रखा और एक बेकार जिंदगी जीने पर मजबूर किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, इशिका बच्चा, तुम्हें यहाँ इस तरह रहने की क्या ज़रूरत है? तुम सिंघानिया फैमिली की बेटी हो और तुम्हारा भी उस घर पर कुछ हक बनता है। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, पर इशिका काफ़ी खुददार थी। वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इशिका ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ। जिस औरत की वजह से मेरा उस घर से रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो तो मेरी माँ होकर भी एक बार भी मुझसे मिलने तक नहीं आई। उन्हें कभी मेरी परवाह नहीं थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे एक्सीडेंट का पता होने के बाद भी वो इतनी पत्थर दिल हो जाएंगी कि एक बार कॉल करके तक नहीं पूछेंगी। इशिका की बातों से उसका दर्द साफ झलक रहा था कि मालविका के पूरे बर्ताव की वजह से उसे अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ होती थी। उसकी बातें सुनकर राधिका की पलकें भी भीगने लगी थी। राधिका ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया, ताकि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। वैसे मालविका, आदर्श और आयशा साथ में किसी ट्रिप पर गए हुए हैं। मैं वहां अकेली हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस बहाने मुझे भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा, राधिका बोली। वो अपनी तरफ से इशिका को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसके साथ सिंघानिया मेंशन रहने के लिए चले। राधिका को जो सूझ रहा था वो बोल रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर इशिका ने आंखें छोटी की और हैरानी भरी लहजे में कहा, क्या आपके और मिस्टर सिंघानिया के बीच कुछ हुआ है मिसेस सिंघानिया? आई मीन, वो जैसे भी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके हिसाब से मैं उनकी और मालविका की एक हल्ती हूँ, और वो मालविका से नफरत भी करते हैं, फिर वो उसके साथ कैसे जा सकते हैं? राधिका अपने प्यार और परवाह में कुछ बातों को भूल गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, हमारे बीच सब ठीक है। मैंने बताया ना, मैं बिजनेस ट्रिप के चलते बाहर गई थी और आयशा को घूमने जाना था। वो बहुत ज़िद्दी है, मालविका के साथ ज़्यादा टाइम बिताती है, तो वो ज़बरदस्ती उसे ले गई थी। उसके आगे तो आदर्श भी कुछ नहीं कह पाते। राधिका ये सब बोल रही थी तो उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आदर्श जैसा इंसान जो सबके सामने एक अच्छा पति होने का दिखावा करता था, वो निहायत ही घटिया इंसान था। इशिका सब कुछ भूल गई थी, पर राधिका को सब याद था। वो उन जख्मों को भूल भी कैसे सकती थी जो आदर्श ने उसे और इशिका को दिए थे। वहीं गाड़ी में बैठे अभिमन्यु ने जब उनकी बातें सुनी तो उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। अभिमन्यु धीमी आवाज में बोला, ये आप क्या कर रही हैं मिसेस सिंघानिया? इशिका स्ट्रांग है, वो खुद को संभाल सकती है। ऊपर से दिशांक भी उसके पास आने वाला है, आपकी बातों से उसे शक हो सकता है। आपको तुरंत वहां से निकलना चाहिए। इशिका की बातों से राधिका भी समझ गई थी कि वो कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन आदर्श और मालविका के होते हुए इशिका सिंघानिया मेंशन कभी नहीं आएगी। राधिका ने इशिका के हाथ को पकड़कर सहलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो प्रॉमिस करो कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे कॉल करोगी। राधिका का दिल रखने के लिए इशिका ने उनकी बात पर हामी भर दी, जबकि राधिका खुद जानती थी कि इशिका कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, वो उनसे मदद नहीं लेगी। इशिका को अपना ध्यान रखने का बोलकर राधिका वहां से निकल गई थी, तो वहीं बाहर खड़ा दिशांक उसके अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राधिका बाहर गई, लगभग 5 मिनट बाद दिशांक अंदर पहुंच गया था। उसने देखा इशिका पूरे घर को घूरकर अजीब नजरों से देख रही थी। सब कुछ तो बिल्कुल पहले जैसा है, फिर ये घर को ऐसे क्यों घूर रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई? दिशांक ने मन ही मन कहा। उसने एक बार फिर से घर की तरफ नजर डाली। हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। दिशांक इशिका के पास गया तो वो बोली, तुम्हें आज मेरा घर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इतने अच्छे से सफाई कर सकूं। ऊपर से मैं काफी दिनों बाद घर आ रही हूं। कुछ ज्यादा ही क्लीन नहीं लग रहा तुम्हें ये घर? दिशांक ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो जबरदस्ती हंसते हुए बोला, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ये घर मैंने साफ करवाया था ताकि आपको ना करना पड़े। आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए और आप मुझ पर डाउट कर रही हैं। लेकिन मैं तो पहले भी बाहर गई थी और तुमने पहले कभी घर साफ नहीं करवाया। खैर कोई बात नहीं, पिछले कुछ दिनों में हमारा काफी काम पेंडिंग रह गया है। अगर यही स्पीड से सब कुछ चलता रहा तो अपनी कंपनी को पब्लिक करने में और टाइम लगेगा। मैं तुम्हें कुछ फाइल्स बताती हूँ, वो ले आना। उन प्रोजेक्ट्स पर पहले काम करते हैं, इशिका काफी सधे हुए लहजे में बोली। वो हमेशा से ऐसी थी, काम पर फोकस करने वाली। आसपास की चीजों पर ध्यान देने का उसके पास टाइम नहीं था। वहीं इशिका के फाइल मांगते ही दिशांक हड़बड़ा गया था। इशिका की कंपनी को पब्लिक हुए एक साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था और वो काफी प्रोग्रेस भी कर चुके थे। आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। दिशांक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम कब से इतनी परवाह जताने लगे? पहले घर साफ करवाना, अब सारा काम खुद कर लोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। जब इतना काम कर ही रहे हो तो मेरे लिए खाना भी बना देना, इशिका ने बेपरवाही से कहा और कमरे में जाने लगी। वहीं उसके जाते ही दिशांक ने राहत की सांस ली। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, एक दिन में ये हालत है, एक महीना ऐसा रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। इन्होंने तो मुझे अपना पर्सनल हाउस हेल्पर बना लिया है, अब क्या सच में मुझे इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा? दिशांक अभिमन्यु के साथ कॉल पर कनेक्ट था और ये बात भूल गया था। उसकी बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से अभिमन्यु ने सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम कुकिंग में अच्छे नहीं हो तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। इशिका जब उठ जाए तो बता देना, उसके लिए मैं फ्रेश फूड भिजवा दूंगा। मिस्टर राजवंश, आप राजवंश एम्पायर के सीईओ हैं, इस तरह गाड़ी में बैठकर कब तक अपनी पत्नी पर नजर रखेंगे? मैं भी अपना काम छोड़कर उनका ध्यान रख रहा हूँ, आप चाहो तो जा सकते हो, दिशांक ने उसे समझाते हुए कहा।
मेरे बिजनेस की चिंता तुम मत करो, मैं इस गाड़ी में बैठकर भी पूरे राजवंश एम्पायर को हैंडल कर सकता हूँ। फिलहाल तुम उन फाइल्स का ड्राफ्ट बनाओ जिस पर इशिका काम करना चाहती थी, अभिमन्यु बोला। बहुत मुश्किल है मिस्टर राजवंश, काम काफी टाइम पहले हो चुका था और अधूरे काम को फिर से करना होगा, दिशांक ने लाचारी से कहा। मुश्किल है मिस्टर राठौर, नामुमकिन नहीं, चुपचाप जो कहा है वो करो, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। वैसे तो दिशांक को पूरा टाइम इशिका के पास रहकर उसकी केयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु ने जिस तरह से पुराना डेटा निकालकर अधूरा काम करने को कहा था वो सच में काफी हेक्टिक था। लेकिन फिर भी इशिका के लिए दिशांक अभिमन्यु के बताए हुए काम में लग गया था। दिशांक से बात करने के बाद अभिमन्यु ने इशिका के कमरे में लगे फुटेज को जूम किया। वो इशिका को सोते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। तुम तो पहले मुझसे भी रूठ थीं, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारा दिल जीता था और तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कन्विंस किया था मिसेस सिंघानिया, लगता है वो सब फिर से करना होगा, अभिमन्यु ने खुद से कहा। वहीं इशिका के घर से निकलने के बाद राधिका केशव के साथ गाड़ी में थी, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। केशव ने राधिका के हाथ को पकड़कर सहलाया और कहा, डोंट वरी, वो अकेली नहीं है, अभिमन्यु ने उसके घर के पास गाड़ी में अपने रहने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है और एनी टाइम उस पर नजर रख रहा है, उसके रहते इशिका अकेले होकर भी सेफ है। बस तभी मैंने उसे अपने साथ आने की ज्यादा जिद नहीं की, मैं जितना उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी उसे उतना ही शक हो रहा था, राधिका ने जवाब दिया। बिल्कुल सही किया, अब बेफिक्र रहो, हम उससे मिलने जाते रहेंगे, केशव ने राधिका को तसल्ली दी। एक वक्त ऐसा था जब अभिमन्यु केशव को इशिका के लिए सही नहीं लगता था। अभिमन्यु में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजवंश फैमिली ने भी इशिका को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब जिस तरह से अभिमन्यु इशिका की केयर कर रहा था, केशव को ये देखकर मन ही मन अभिमन्यु पर नाज हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और सेलिना को मुंबई आए हुए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में तृप्ति अपनी तरफ से आशिका को ढूंढने के लिए पूरे हाथ पैर मार रही थी, यहां तक कि आशी भी अपनी तरफ से उसकी मदद कर रही थी, पर उन्हें आशिका के बारे में कुछ पता नहीं चला था। स्काई ने आशिका को ढूंढने के लिए जो टाइम दिया था वो पूरे होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। सुबह सुबह तृप्ति अपनी फ्रस्ट्रेशन में सेलिना पर गुस्सा कर रही थी। न जाने वो लड़की कहाँ मर गई है, मुझे तो लगता है कि मुंबई छोड़कर चली गई होगी, उसके चक्कर में हम यहाँ पर फंस गए हैं। रोज अपनी जान को खतरे में डालकर उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से तुम्हें यहाँ पार्टी करने से फुर्सत नहीं मिलती, तृप्ति ने तेज आवाज में कहा। सेलिना किचन में खड़ी अपने लिए कॉफी बना रही थी। हमेशा की तरह वो कल रात भी काफी ज्यादा ड्रिंक करके आई थी और इस वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। सेलिना ने तृप्ति की बात सुनकर आइस रोल की और उसके पास आते हुए कहा, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी खुद की बेटी आपको भाव नहीं दे रही है और जिसे अपनी बेटी की तरह इतने सालों तक पाला उसकी जिंदगी के बारे में आपको कोई खबर नहीं। मिस्टर स्काई से सौदा करने से पहले आपको उससे पता लगा लेना चाहिए था कि उसने शादी की है या नहीं। वो इतने सालों से आपसे दूर थी, किसे पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था।
वो दोनों ही मुझसे दूर थीं, लेकिन तुम तो मेरे पास थीं और मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो सलीना, तो कौन करेगा? तृप्ति ने खुद को शांत करके कहा। वैसे भी सलीना पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं था। अगर सगी बेटी की तरह प्यार किया होता तो सब कुछ सच बता देती। इतने सालों तक मुझे लगता रहा कि वो आशिका आपकी बेटी है। मैंने आपसे अब तक अपनी जिंदगी का कोई राज नहीं छुपाया था, पर आपने कभी मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया, तो अब आप मुझसे हेल्प क्यों मांग रही हैं? सलीना ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। सलीना वहां से जाने लगी, तभी तृप्ति पीछे से जोर से चिल्लाई, तुम इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। ये सब नुकसान और लोन तुम्हारी वजह से ही हुआ है। देखो, मैं तुम्हें इन सब के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर हमें मिलकर आशिका को ढूंढना ही होगा। सलीना उसकी तरफ पलटी और कंधे उचकाकर बोली, कैसे ढूंढेंगी? हम तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ना उसका कोई दोस्त है और ना यहाँ कोई रिश्तेदार, और कौन जानता है कि वो यहाँ पर है भी या नहीं। सलीना की बात में दम था। स्काई ने यही पता लगाया था कि आशिका ने आखिरी फ्लाइट मुंबई की ली थी। उसके बाद वो वहां से कहाँ गई ये कोई नहीं जानता था। फिर वो उसे मुंबई में ढूंढकर क्यों टाइम खराब कर रहे थे? ठीक है, मैं इस बारे में मिस्टर स्काई से बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे मुंबई में ढूंढना चाहिए। इसी बहाने हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, तृप्ति बोली, जिस पर सलीना ने उसकी बात पर सहमति जताई। सलीना ने खुद के लिए बनाई कॉफी पी और तैयार होकर हमेशा की तरह बाहर घूमने के लिए चली गई थी। उसका यही रूटीन था। इतने दिनों में उसने मुंबई को पूरी तरह एक्सप्लोर कर दिया था और आज संडे होने की वजह से उसका शॉपिंग करने का मन था। सलीना मॉल में पहुंची, वो वहां के सबसे लग्जरियस स्टोर के अंदर गई, तभी उसकी नजर अभिमान पर गई। इतने दिनों में अभिमान को दोबारा देखा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज तो नाम और नंबर लेकर ही निकलूंगी, सलीना ने मुस्कुराकर कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि अभिमान मुस्कुराते हुए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ रहा था। ट्रायल रूम का दरवाजा खुला था और उससे आशिका बाहर निकली थी। संडे होने की वजह से अभिमान जिद करके आशिका को शॉपिंग करने के लिए लेकर आया था। वो चाहता था कि आशिका थोड़ा खुद को लड़कियों की तरह ड्रेसअप करके देखे। आशिका और अभिमान के बीच दोस्ती हो गई थी, तो उसके फोर्स करने पर वो मना भी नहीं कर पाई। हालांकि अंदर आते वक्त आशिका ने अपनी सिक्योरिटी के चलते मास्क और टोपी लगा रखी थी, लेकिन ट्रायल रूम से बाहर निकलते हुए उसने सब कुछ हटा दिया था। उसे देखकर सलीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, तो अगले ही पल उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। आशिका के मिलते ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत दूर होने वाली थी। आज मॉम पक्का मुझे शाबाशी देने वाली है और अब उस मिस्टर स्काई से भी पीछा छूट जाएगा। वेल डन सलीना हिल, सलीना ने खुद की पीठ थपथपाई और अपने कदम आशिका की तरफ बढ़ने लगी।